आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं प्रकृति के उन अनमोल खजानों को जो हमारे चारों ओर हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल। हमारे पास जो सामग्री है, खासकर चैप्टर 11, वो इसी पर बात करती है।
बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, जैसे कि ये प्राकृतिक संसाधन असल में हैं क्या, इनकी किस्में कौन सी हैं, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और सबसे जरूरी इन्हें बचाना क्यों जरूरी है।
हाँ, तो चलिए इस विषय को खोलते हैं थोड़ा। सोचिए, हम सब इन प्राकृतिक चीजों पर कितना कितना निर्भर करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे? यहीं से ये चर्चा और भी अहम हो जाती है ना?
बिल्कुल, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अध्याय 11 प्राकृतिक संसाधनों को कैसे, क्या कहते हैं, परिभाषित करता है। ये वो चीजें हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं और धरती पर जीवन को मुमकिन बनाती हैं, जैसे सूरज की रोशनी हो गई, हवा, पानी, खनिज, जंगल, ये सब।
हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इन्हीं कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके फिर इंसान अपनी जरूरत की चीजें बनाता है।
जैसे मान लीजिए लकड़ी से मेज कुर्सी बन गई या सिलिकॉन से सोलर पैनल, तो बुनियाद तो असल में प्रकृति ही है।
सही कहा।
और इस सामग्री में, जैसा हमने कहा, इन संसाधनों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
नवीकरणीय
मतलब जो दोबारा बन सकते हैं।
हाँ
बिल्कुल, जो कुदरती तौर पर फिर से बन जाते हैं या जिनकी भरपाई हो जाती है।
हाँ,
रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं कह सकते हैं,
जैसे हवा, पानी या जंगल।
बिल्कुल, हवा का चौकना एक चक्र है, वो घूमती रहती है, पानी बारिश और नदियों से फिर भर जाता है, और अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो जंगल फिर से हरे भरे हो सकते हैं। इसी में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी आते हैं।
अच्छा,
स्रोत में भारत के तटीय राज्यों का जिक्र है, जैसे तमिलनाडु और गुजरात, जहाँ पवन चक्कियां काफी हैं।
हाँ, वो बड़े बड़े पंखे जो घूमते रहते हैं।
वही,
और एक तथ्य तो वाकई कमाल का है। चैप्टर 11 में लिखा है कि एक अकेला बड़ा पेड़ साल भर में 20 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
पर ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ नवीकरणीय होने का मतलब ये नहीं कि वो हर जगह हर समय बेहिसाब मौजूद है, या फिर उनके इस्तेमाल का कोई असर ही नहीं होता पर्यावरण पर।
एकदम सही कहा। पानी नवीकरणीय जरूर है, पर हम सब जानते हैं कि साफ पीने के पानी की किल्लत कई जगहों पर है।
खैर, अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, अनवीकरणीय संसाधन। ये वो हैं जो बहुत सीमित मात्रा में हैं और जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं।
यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और दूसरे खनिज वगैरह।
हाँ, जीवाश्म ईंधन जिन्हें कहते हैं।
हम इन पर खासकर बिजली और गाड़ियों वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा निर्भर करते हैं आज भी।
करते हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इनके इस्तेमाल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग।
बिल्कुल, और ये सचमुच में सीमित हैं। मतलब आज हम जो कोयला जला रहे हैं, अध्याय में याद दिलाता है कि वो लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे उनसे बना है। इसे हम दोबारा बना तो नहीं सकते, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा, और साथ ही जो स्थायी विकल्प हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उन्हें तेजी से अपनाना होगा।
हाँ, और यहीं पर संरक्षण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार आता है। स्रोत के अनुसार इसका मतलब यही है कि हम आज अपनी जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे।
महात्मा गांधी की वो बात यहाँ एकदम फिट बैठती है ना? पृथ्वी हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, पर किसी एक के लालच के लिए नहीं।
बहुत खूब कहा था।
और इसे असलियत में लाने के लिए वो 3 R का जो सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब कम इस्तेमाल करो, दोबारा इस्तेमाल करो और फिर रिसाइकल करो, ये बहुत कारगर है।
सही है।
इस अध्याय में बारिश के पानी को बचाने, वर्षा जल संचयन और चिपको आंदोलन जैसे जो वनों को बचाने का प्रयास हुए हैं उनका भी जिक्र है। ये सब संरक्षण की अहमियत को ही दिखाते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार ये निकलता है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये वाकई बेशकीमती हैं, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय।
हाँ जी,
इनके बीच का फर्क समझना और इन्हें बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ये हमारे अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, सतत विकास अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन चुका है। ये एक तरह का संतुलन है हमारी आज की जरूरतों और पर्यावरण की सेहत के बीच, आज और कल के बीच का संतुलन।
सही कहा। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, आज की इस चर्चा के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर असरदार बदलाव ला सकते हैं जिससे इन संसाधनों की बर्बादी को हम थोड़ा कम कर सकें, इस पर सोचिएगा जरूर।